नदीरा वनचारे जय राधा माधव कुंज बिहारे जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर दारे यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारे जय राधा माधव कुंज बिहारे जय राधा माधव कुंज बिहारे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरिबो 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 नित्य गौर हरिबो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा Reading from Srimad Bhagavatam. Canto 8. Srimad Bhagavatam se hum pad rahe hai. Skand 8wa, chapter 3. Aur shlok 10. नम आत्म प्रदीपाय नम आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने साक्षिणे परमात्मने नमो गिरान विदुराय नमो गिरान विदुराय मनस शेचत सामी प्रिय मनस शेचत सामी पी नम आत्मा प्रदीपाय साक्षिने परमात्मने नमो गिरान विदुराय मनश्चेच्च सामीपे माता जी नमः। मैं नमस्कार करता हूं आत्म प्रदीपाय, आत्म प्रकाशित को या जीवों को प्रकाश देने वाले को, साक्षी ने प्रत्येक के हृदय में साक्षी स्वरूप शिक्षित परम आत्मने परमात्मा में नमः। मैं सादर नमस्कार करता हूं गिराम वाणी से, विदुराय अत्यंत दूर अगम्य मनस मन से, चेतसाम या चेतना से, अपि भी मैं उन आत्म प्रकाशित परमात्मा को सादर नमस्कार करता हूं जो प्रत्येक हृदय में साक्षी स्वरूप शिक्षित है, जो व्यष्टित जीवात्मा को प्रकाशित करते हैं और जिन तक मन वाणी या चेतना के प्रयासों द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस ए से भक्तिवेदांत शिल प्रभुपाद द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मानसिक शारीरिक या बौद्धिक प्रयासों से मनुष्य द्वारा नहीं समझे जा सकते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से ही व्यष्टित आत्मा प्रकाशित होता है, इसीलिए श्री भगवान को यहां पे आत्म प्रदीप कहा गया है। श्री भगवान सूर्य के समान है जो प्रत्येक वस्तु को प्रकाशित करते हैं किंतु स्वयं किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं होते। अतएव जो उन्हें जानने का इच्छुक है उसे चाहिए कि उनसे आलोक प्राप्त करे, जिसकी श्रीमद् भगवद गीता में उद्देश्य दिया गया है। अपने मानसिक, शारीरिक या बौद्धिक बल से कोई भी श्री भगवान को नहीं समझ सकता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। मेरा परम सौभाग्य है कि आज इस्कॉन वृंदावन धाम में श्रीमद् भागवतम कक्षा हिंदी में करने का अवसर मिला। जैसे कि आप समझ गए होंगे, हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, मेरा मातृभाषा तमिल है। तो मैं दक्षिण भारत का हूँ और ज्यादातर मैं अंग्रेजी में लेक्चर देता हूँ। तो यूजुअली जब भी मैं अंग्रेजी में लेक्चर देता हूँ, जब भी मैं हिंदी में लेक्चर देता हूँ कभी भी, तो मैं ट्रांसलेशन पर्पस जो है मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं लेक्चर हिंदी में दे देता हूँ। अभी यहाँ पे वृंदावन में थोड़ा सा प्रयास करना पड़ा हिंदी में पढ़ने की, थोड़ा टूटी फूटी हिंदी में पढ़ लिया मैंने, आप लोग माफ कर दीजिए। अभी मैं ये जो श्लोक है जो हमने पढ़ा अभी, इस श्लोक के आधार पे और इस श्लोक के अनुसार हम कुछ बोलने की प्रयास करेंगे अपने शुद्धिकरण के लिए। हम इस समय गजेंद्र मोक्ष की लीला पढ़ रहे हैं और अचरज की बात यह है कि मुझे एक दिन पहले पता चला कि मैं यहाँ पे भागवत दे रहा हूँ क्लास, और मैंने श्लोक जो है आज सुबह देखा। और अचरज की बात यह है कि मैं 3-4 दिन पहले ही गजेंद्र मोक्ष की स्थली पे गया था। दक्षिण भारत में एक स्थान है, एक नरसिंह देव का मंदिर है, जहां पे मदुरई के पास, मदुरई से एक 30-40 मिनट दूर गजेंद्र मोक्ष का स्थान है। और जहां पे वो गजेंद्र मोक्ष लीला हुआ था, वहां पे जाके दर्शन करके प्रणाम करके प्रार्थना करके मैं आया, और जैसे ही वृंदावन में आया गजेंद्र मोक्ष का श्लोक मिल गया। अब सोचिए कितनी सौभाग्य की बात है। तो मैं उस समय गजेंद्र मोक्ष के बारे में सोच रहा था और गजेंद्र मोक्ष लीला के बारे में मनन कर रहा था, तभी उस लीला पे वर्णन करने का और कीर्तन करने का अवसर मिला है। तो आप लोग सभी लोग के आशीर्वाद से थोड़ा सा कुछ बोल पाएंगे। तो इस श्लोक में बताते हैं कि हमारी बुद्धि, हमारा मन और हमारी प्रयत्न से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। जब मैं कम से कम करीबन 19-20 साल का था, मैं हमारे इस्कॉन के बहुत बड़े विद्वान हिज ग्रेस गोपी परंदन प्रभु, जो हमारे बीच नहीं है अभी, लेकिन उन महान महानुभाव को मैं मिला, और मैं अपने समझ से मैंने उनको एक सवाल पूछ लिया। 20 साल पहला सवाल था, लेकिन अभी भी उनका जवाब मुझे याद है। मैंने उनको पूछा कि श्रीमद् भागवतम को, पूरे श्रीमद् भागवतम को कैसे एकदम 100% समझना है, मुझे मास्टर करना है श्रीमद् भागवतम को, आप बताइए क्या तरीका है, क्या कर सकता हूं जो मैं पूरे श्रीमद् भागवतम को पूरा पूरी तरह निचोड़ के पी जाऊं। तो गोपी बरंदन प्रभु ने अपनी नम्रता से और अपने प्रेम से मुझे समझाया कि श्रीमद् भागवत जो है कृष्ण है, और कृष्ण को समझना किसी की बुद्धि के की परे है, कोई भी समझ नहीं सकता है। तो उन्होंने कहा मुझे कि श्रीमद् भागवतम को पूरी तरह समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि संभव ही नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवतम के हर श्लोक के ऊपर मनन करना और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना। तो उस समय मैं समझ गया कि हमारा जैसे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होता है या कोई भी मैथ्स का साइंस का सब्जेक्ट होता है, उसको कंटेस्ट कर सकते हैं आराम से, उसको पूरा निचोड़ के समझ सकते हैं आराम से, लेकिन वही जो इंजीनियरिंग लॉजिक वगैरह है वो यहां पे इस्तेमाल करेंगे काम आएगा ही नहीं, है कि नहीं। जैसे गजेंद्र मोक्ष की लीला में वर्णन आता है स्थान का, जहां पे गजेंद्र मोक्ष की लीला हो रही है, त्रिकुट पर्वत का वर्णन आता है, और क्या वर्णन है उसमें, तो वहां बताया जाता है कि त्रिकुट पर्वत जो है, हर पर्वत जो है चांदी और सोना से बना हुआ था, तो और उस पर्वत के नीचे जो पानी है, पानी बह रहा है, वो पानी भी एकदम शुद्ध और बहुत ही मोहित करने वाला पानी है, और उस पानी में इतने सारे हीरे जवाहरात वगैरह है, और गजेंद्र के बारे में वर्णन आता है कि एक हाथी जिसमें 10,000 हाथियों की शक्ति है, और ये जो हाथी है बोल भी सकता है, बात भी कर सकता है, प्रार्थनाएं भी अर्पण कर सकता है, और इतना ही नहीं, इतने अलग अलग प्रकार के डिटेल वर्णन भागवत में आता है। जैसे जम्बूद्वीप का वर्णन आता है, उस एक पेड़ के बारे में बताते हैं जम्बूद्वीप में, वो पेड़ जो है 3,000 फीट लंबा है। अभी हम, आप और हम 3,000 फीट लंबा पेड़ के बारे में सोचेंगे तो संभव कैसा है, लॉजिक ही नहीं है, है ना। और उसमें आम लटके हुए है जो एक हाथी जितना बड़ा आम है, आप सोचिए अब हाथी जितना बड़ा आम कभी होता है क्या। और उतना ही नहीं, उसमें यह भी वर्णन आता है कि उस आम में गुठली नहीं है, ऐसा कभी देखा क्या हमने, सिर्फ गुठली नहीं, छिलका भी नहीं है, ऐसा कैसा हो सकता है। और उसके ऊपर वर्णन आता है कि वो आम जो है ऊपर से गिरता है, आप सोचिए इतना हाथी बड़ा जितना आम ऊपर से गिरेगा और वो मैंगो जूस बन जाता है, आमरस, और आमरस जो है बहुत सारे आम गिरते हैं और आमरस का नदी बन जाता है। आपने कभी आमरस का नदी देखा, संभव ही नहीं है हमारे बुद्धि से। और उसके ऊपर वर्णन आता है कि आमरस का नदी में जब सूरज की किरणें गिरती है तो रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है और सोना बनता है, और वो जो स्वर्ग लोग में रहते हैं वो लोग ऐसा हाथ डालते हैं आमरस की नदी में, सोना निकाल के पहन लेते हैं। आप सोचिए ये हम अपने सीमित बुद्धि से समझने की कोशिश करेंगे तो क्या समझेंगे हम, है कि नहीं। तो ये हमारे बुद्धि की परे है। तो श्रीमद् भागवतम को समझना आसान नहीं है, क्यों, ऐसा नहीं कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन हमारी बुद्धि में सीमा है। जैसे यहां पे एक कीड़ा, स्पाइडर को क्या बोलते हाँ, एक मकड़ी यहां पे घूम रहा है, सपोज यहां एक कमरे में एक मकड़ी घूम रहा है, ठीक है, हालांकि बहुत शुद्ध है यहां पे तो मकड़ी नहीं होना चाहिए, सपोज एक मकड़ी किधर तो घूम रहा है, ठीक है, और वो मकड़ी उसके उसके हिसाब से यहां पे क्या चल रहा है, आपको क्या लगता है, उसके हिसाब से हम लोग कोई भी नहीं है रूम में, क्यों, उसको कुछ दिखता ही नहीं है, उसके हिसाब से मैं लेक्चर दे ही नहीं रहा हूं, क्यों, उसको कुछ सुना ही नहीं देता है, उसके हिसाब से तुलसी ये फूल की सुगंध है ही नहीं, क्यों वो सूंघ ही नहीं सकता है। तो मकड़ी सही है कि ये हकीकत सही है? ये हकीकत सही है कि नहीं? मकड़ी का जो इंद्रिया है वो सीमित है, उसका बुद्धि समझने का जो शक्ति है वो बहुत सीमित है, इसलिए उसको सिर्फ उतना ही समझ में आता है जिसको वो स्पर्श करता है। आपको वो स्पर्श कर दिया तो आप एग्जिस्ट करते हो उसके लिए, आपको वो स्पर्श नहीं कर पा रहे तो आप है ही नहीं। तो आप चाहे उसके कान में जितना भी चिल्लाओ उसके लिए तो आप एग्जिस्ट करते ही नहीं हो, आप है ही नहीं। तो मकड़ी का दिमाग जो है बहुत ही सीमित है, उसका बुद्धि बहुत ही सीमित है वास्तविक चीजों को समझने के लिए। वैसे ही आध्यात्मिक चीजों को समझने के लिए हमारा बुद्धि सीमित है, हमारी जो समझ है वो बहुत सीमित है, और उस सीमित समझ से असीमित चीजों को समझना संभव ही नहीं है। इसलिए यहां पे श्रद्धा की आवश्यकता होती है। जो बुद्धि के परे चीजों को समझने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं होती है, श्रद्धा की जरूरत होती है। हम सब लोग बहुत चीज करते हैं, बहुत सारा चीज करते हैं, बहुत सारा प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे प्रयास से क्या हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? एक बार हमारे एक प्रोजी थे जो अमेरिका वीजा अप्लाई करने के लिए गए थे एक यूएस की वीजा काउंसुलेट में, तो उनको एक अलग ही प्रकार का अनुभव हुआ, और वो अनुभव से हमको समझ में आता है कि हमारे जीवन में जब हम आध्यात्मिक प्रगति करने की कोशिश करते हैं, आध्यात्मिक कार्य करने की कोशिश करते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए उस आध्यात्मिक कार्य में। जैसे हम क्या क्या करते हैं आप सोचिए, हम लोग हम सब लोग सोलह माला करते हैं, जब चार नियमों का पालन करते हैं और उसके ऊपर पुस्तक वितरण करते हैं, पुस्तकों को पढ़ते हैं, आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, सेवा करते हैं, इतना सारा दान दक्षिणा देते हैं, इतना सारा अच्छा अच्छा चीज हम करते हैं, है कि नहीं? लेकिन उन अच्छी चीजों के अंदर क्या हमारी चेतना अच्छी है वो करते वक्त? एक बार एक आदमी आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, मर गया और वो आध्यात्मिक जगत पहुंच गया। गेट में उसको रोका गया, उसको पूछा गया कि आप अंदर जाने के लिए आपने क्या किया बताइए, नीचे आपने क्या किया ऐसा कुछ। तो वो उल्लेख करने लगा कि उसने क्या क्या किया उसने अपने पूरे जीवन में। आप सोचिए कि ये हम ही है और हम आध्यात्मिक जगत के गेट पे पहुंच गए हैं और कोई हमको पूछ रहा है कि आपने जीवन भर क्या किया भाई आपको अंदर लेने के लिए। तो वो व्यक्ति जो गेट पे है वो बोल रहा है उस व्यक्ति को कि मैं आपको 100 नंबर दूंगा, ये 100 नंबर पे आपको आप अपना जीवन में बताइए क्या क्या किया आपने, अगर आपको 100 नंबर मिल गया तब आपको एंट्री मिलेगा आध्यात्मिक जगत में, आपको 100 नंबर नहीं मिला तो आप अंदर नहीं जा सकते। तो बोला ठीक है, हम तो प्रभुपाद के अनुयायी है और इस्कॉन में बहुत कुछ किया हमने, बताएंगे। तो उसने कहा कि मैं पूरा जीवन 16 माला का जपा किया। वो व्यक्ति बोलते हैं 4 नंबर। बोला यार 16 माला पूरा जीवन किया सिर्फ 4 नंबर दे रहे हो? बोले ठीक है और बोलो और क्या किया। पूरा जीवन 4 नियमों का पालन किया, ठीक है और 2 नंबर। तो उसको बोल रहे पूरा जीवन जो है मैंने पुस्तक वितरण किया, तो बोला ठीक है 4 और नंबर। तो बोल रहे बहुत दान दक्षिणा दिया, सारे इस्कॉन के मंदिरों में दान दक्षिणा दिया, ठीक है चलो और 2 नंबर। और वो बोल रहा है मैं अपने परिवार को अच्छी तरह से संभाल के रखा और सबकी देखभाल की, तो बोला ठीक है और 2 नंबर। और वो बोल रहा है वो सोचने लगा और मैंने क्या किया जीवन में, बोला बहुत तीर्थ यात्रा किया, ठीक है और 4 नंबर। तो ऐसा उसने जितना सब कुछ किया, फास्टिंग किया मैंने एकादशी में, बहुत पूरा जीवन एकादशी फास्टिंग किया, तो बोला ठीक है और 4 नंबर। तो ऐसा गिनते गिनते उसने जितना उसने किया जीवन में आध्यात्मिक स्तर पे और भौतिक स्तर पे भी उसने बोल दिया, अंत में टोटल आया 16 नंबर, 15-16 नंबर। ये आदमी बोल रहा है भाई इतना कुछ किया 15-16 नंबर ही आया। वो सोचने लगा और मैंने क्या किया थोड़ा 100 नंबर तक पहुंचने के लिए। उसने अंत में सोचना बंद कर दिया और उसने कहा कि ऐसा चलता रहेगा तो भगवान की कृपा ही चाहिए अंदर जाने के लिए। तो जैसे उसने ये कहा बोला आपका 100 नंबर हो गया, अंदर चलो अभी। कहने का तात्पर्य यह है पूरे जीवन में आप जितना भी करोगे अपने प्रयास से वो 15-16 नंबर ही आएगा, लेकिन बाकी जो 85 है वो भगवान की कृपा से ही आएगा, हमारी क्षमता से हमारे कैपेसिटी से नहीं आने वाला है कि नहीं। तो हम वृंदावन धाम में है जो कृपा धाम है, और यहां पे जो 85 नंबर जो बाकी नंबर है उसको जोड़ने के लिए आए हैं यहां पे, है ना। तो यहां पे जो निवास कर रहे हैं यहां पे वृंदावन धाम में आए हैं, बस वो जो बाकी है जो हमारे कैपेसिटी के परे है हमारी क्षमता के परे है उसको जोड़ने के लिए हम ऐसे धाम आते हैं जहां पे राधा रानी का निवास है, जहां पे राधा रानी का आशीर्वाद है, जहां पे राधा रानी का कृपा है। और जय इस्कॉन संस्था हमें बहुत कुछ देती है, प्रभुपाद की कृपा से हमें बहुत कुछ मिलता है और वो सब जो है हमें करना भी चाहिए, लेकिन हमें ये समझना चाहिए उसके साथ साथ सिर्फ वो करने से हम भगवत धाम नहीं जा सकते। जब तक भगवान की कृपा न हो वो कृपा कैसे आएगी उसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। हम जो भी कार्य करते हैं इस्कॉन में हमारी सोच क्या है वो कार्य करने में, जैसे हम 16 माला जपा करते हैं तो जपा करते वक्त सपोज आप समझिए बाई मिस्टेक जपा करते वक्त भगवान कृष्ण हमारे सामने आ गए तो क्या देखेंगे, बहुत भयानक दृश्य देखेंगे है कि नहीं ना। हम लोग जपा कैसे करते हैं, कैसे भी करते बस 16 माला खत्म होना चाहिए है कि नहीं। बाय मिस्टेक भगवान हमारे सामने आ गए और हमको देख लिया जपा करते वक्त, वो तो भाग जाएंगे एकदम। हमारे भक्त थे जो ट्रेन में सफर कर रहे थे, अभी हिंदी का सफर और इंग्लिश का सफर में बहुत अंतर है ना। भारतीय रेलवे में सफर करोगे तो एक्चुअली इंग्लिश का सफर ही होता है। तो हमारे एक भक्त जो है ट्रेन में सफर कर रहे थे एक दूसरे एक जगह से दूसरे जगह, और वो सुबह सुबह उठ के जपा कर रहे थे बैठ के ट्रेन में, और वो ऐसा सर हिला हिला के बहुत पूरा शरीर को हिला हिला के जपा कर रहे थे, आंख बंद करके दांत दिखाते हुए है ना। तो एक आदमी वहां पर बैठा हुआ था और उनको देख रहा था, बहुत गहराई से देख रहा था। एक घंटे के बाद वो दूसरे प्रभु जी के पास गए, उसको पूछे यार ये इतना कष्ट इतने मुश्किल में क्यों है, सब ठीक है उसके जीवन में, इतना स्ट्रगल मार रहा है इतना। तो प्रभु जी ने कहा ये हमारा फॉर्मूला जो है चैंट एंड बी हैप्पी है, लेकिन वो चैंट एंड बी हैप्पी दिखता नहीं है, चैंट स्ट्रगल एंड बी हैप्पी है, तभी वो स्ट्रगल जो है ना उसका फेस चल रहा है। तो हम जब करते हैं माला करते हैं तो बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत ही कष्ट होता है, और उसमें भी हमारा हृदय जैसा यू नो पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। जैसे हमारे एक राधा गोपीनाथ मंदिर में एक गुरुकुल हुआ करता था जहां पे छोटे बच्चे बहुत सारे बच्चे छोटे बच्चे रहते थे, और गुरुकुल के सारे बच्चों को कंपलसरी था कि सुबह आके सबके साथ जपा करना, राउंड सर्कल में बैठते थे और सब साथ में जपा करते थे। तो हमारे एक प्रभु जी है जो उनके साथ बैठते थे उनके साथ जपा करते थे, और एक बच्चा था एकदम नटखट था उस गुरुकुल में, इतना नटखट था कुछ लोगों को शैतानी करता रहता था। तो एक यहां पे जपा में बैठा हुआ था और माला उसके हाथ में था, बीड बैग उसके हाथ में था, और ऐसा हिला हिला के बहुत ही एंथुजियास्टिकली जपा कर रहा है। वो प्रभु जी को डाउट आया इस पे, बोला अति भक्ति चोरेर लक्षण बोलते है ना, बोला कुछ तो गड़बड़ है, जाके उसके माला को बीड बैग को निकाल के देखा अंदर माला ही नहीं है, वो ऐसे ही हिला हिला के कुछ भी कर रहा है। तो सोचिए भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाए और देखे कि हम जपा कैसे कर रहे तो हमारा तो हालत खराब हो जाएगा है कि नहीं। तो जपा छोड़ दीजिए, अभी चलो सेवा पे आते हैं। बोलते हैं बहुत सेवा कर रहे हैं हम लोग, भगवान की सेवा बहुत कर रहे हैं। तो हम सेवा जब कर रहे हैं कौन से सोच विचार के साथ सेवा कर रहे हैं, क्या हमारे मन में है, जो जिस भाव से जो सेवा कर रहे हैं वो सही भाव है क्या। जैसे प्रभुपाद जी एक बार एक मंदिर में गए थे इस्कॉन के, और वहां से वो किधर कोई और देश जा रहे थे, तो जाने से पहले एक माताजी थी जिसने सोचा कि प्रभुपाद के लिए समोसा बनाऊंगी, तो उसने बहुत अच्छे अच्छे समोसा बनाए प्रभुपाद जी के लिए उनके रास्ते के लिए। तो प्रभुपाद निकलने से पहले पूछे कि क्या बनाया रास्ते के लिए, तो उन लोगों ने बोला समोसा बनाया प्रभुपाद। प्रभुपाद ने बोला लेके आओ, तो एक समोसा खा लिया उधर ही, तो प्रभुपाद ने कहा और एक लेके आओ, तो और एक समोसा खा लिया, देखते देखते 8 समोसा खा लिया एक साथ प्रभुपाद ने। तो माताजी जो समोसा बना रही थी वो बहुत खुश हो गई, उसको लगा प्रभुपाद को मेरा समोसा इतना अच्छा लगा, जाके प्रभुपाद को पूछती है, प्रभुपाद हु इज योर फेवरेट कुक इन इस्कॉन, पूरे इस्कॉन में आपका फेवरेट जो कुक है कौन है। उसको लगा मैं हूं, बोलेंगे मतलब प्रभुपाद बोलेंगे कि वो है कि नहीं, तो वो सोच के ऐसा गई थी, ऐसा भी सवाल पूछ रही है। प्रभुपाद ने कहा माई फेवरेट कुक इज मी ओनली, प्रभुपाद ने कहा मैं ही हूं मेरा फेवरेट कुक। तो प्रभु माता जी थोड़ा सा स्तब्ध रहेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो भी सेवा करते हैं इस भाव से करते हैं कि कोई आके मुझे बताए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो मतलब सेवा में हम लोग मेवा ढूंढते है कि नहीं, मतलब सेवा तो करते हैं लेकिन उसके पीछे मकसद क्या है हमारा। जब तक हम वो मकसद समझेंगे नहीं, इंटेंशन समझेंगे नहीं, तब तक वो सेवा करने का मतलब नहीं है। इसलिए प्रभुपाद हमारे उनके तात्पर्य में जब भी लिखते हैं सर्विस के बारे में लिखते हैं, वो हमेशा सर्विस एटीट्यूड लिखते हैं, मतलब सिर्फ सेवा करना नहीं है, सही चेतना के साथ सेवा करना है। तो आप सोचिए अगर भगवान हमारी सेवा को इंस्पेक्ट करेंगे तो हमको क्या नंबर देंगे, है ना। तो सेवा तो बहुत कर रहे हैं लेकिन क्या चेतना है हमारी सेवा करते वक्त। ठीक है सेवा छोड़ दो, ज्ञान के बारे में आते हैं। हम लोग बहुत ज्ञान अर्जित करते हैं, रोज भागवतम अटेंड करते हैं, प्रभुपाद के कितने सारे किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हम हमारा जो सोचने का समझने का जो तरीका है और ज्ञान अर्जित करने का तरीका है वो सही है। और ज्ञान के बाद जो अहंकार आता है ज्ञानी बनने का, क्या वो अहंकार सही है। आप कोई भी इस्कॉन मंदिर में जाओगे लोग दंडवत मारते रहते हैं ना, इधर उधर दंडवत मारते हैं। नए लोग जब आते हैं ना कुछ भक्त ऐसे वेट करते हैं उनको मिस्टेक करने का, दंडवत सही तरीके से नहीं किया जाके ठोकते हैं, अरे क्या कर रहे हो तुम, गलत तरीके से दंडवत मार रहे हो। मतलब कि हमारे पास थोड़ा ज्ञान जो है ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान है उनसे, और ज्ञान प्रदर्शन करने में हम बहुत माहिर है। ज्ञान होना चाहिए और दूसरों को ज्ञान बांटना भी चाहिए, लेकिन किस तरीके से बांट रहे हैं, किस तरीके से वो ज्ञान को दे रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। क्या उस ज्ञान से हमारा अहंकार दिखता है या उस ज्ञान से हमारी कृपा दिखती है। सूरज जो है बहुत शक्तिशाली है, सूरज किरण देता है, रोशनी देता है ना। सूरज जो है ज्ञान की प्रकाश को प्रतीत करता है, लेकिन वही सूरज गर्मी के मौसम में आप देखोगे कोई उस सूरज को पसंद नहीं करता। सूर्य की किरणें बहुत आ रही है, लाइट बहुत आ रहा है, लेकिन लाइट के साथ साथ गर्मी भी तो आ रही है। तो आप जो समर सन है, जो गर्मी का जो सूर्य है, उसको लोग गाली देते रहते हैं, क्यों, बहुत प्रकाश है लेकिन साथ साथ बहुत गर्मी भी है। तो वैसे जिस व्यक्ति के पास बहुत ज्ञान है, मतलब लाइट दे रहे बहुत सारा, लेकिन वो ज्ञान के साथ साथ गर्मी भी दिखा रहे, मतलब क्या, अहंकार भी दिखा रहे है ना, वैसे व्यक्ति को लोग पसंद करते ही नहीं है। मतलब आपका ज्ञान है ठीक है भाई, हमको मत दिखाना है ना, लेकिन आप कार्तिक के सूरज को देखोगे लोग बहुत पसंद करते हैं। कार्तिक महीने में सूरज जब उगता है ना लोग सूरज को बहुत तारीफ करते हैं, क्यों, क्योंकि जब ठंडी है और उस समय सही टेम्परेचर के साथ सूरज झलकता है, सूरज अपने रोशनी देता है और उसके साथ साथ गर्मी भी प्रदान करता है, तो वो गर्मी से राहत मिलती है। तो मतलब जो व्यक्ति ज्ञानवान है ज्ञान के साथ साथ नम्रता भी है उसमें, उस ज्ञान को लोग बहुत प्रशंसा करते हैं, उस ज्ञान से बहुत प्रभावित होते हैं लोग। तो हम जब ज्ञान देते हैं तो हमारे अंदर क्या गर्मी की सूरज के ज्ञान है या कार्तिक सूरज के ज्ञान है, वो हमको समझना चाहिए। ज्यादातर ज्ञान जो है, थोड़ा सा ज्ञान बढ़ गया तो हम लोग अपना गर्मी दिखाने लगते हैं, हम लोग अपना अहंकार दिखाने लगते हैं, हम लोग अपना जो ज्ञान का प्रदर्शन करने लगता है। इस तरीके से लोगों के हृदय को ठेस पहुंचता है। तो हमें ज्ञान देना चाहिए, लेकिन ज्ञान के साथ साथ कृपा के साथ ज्ञान देना चाहिए। तो उस ज्ञान से लोग प्रभावित होते हैं, उस ज्ञान से लोग प्रेरित होते हैं। लेकिन ऐसा आप ज्ञान दोगे कि लोग जो है डर जाते हैं, उस ज्ञान से लोग दूर रहते हैं। तो हमने जपा के बारे में देख लिया, सेवा के बारे में देख लिया, ज्ञान के बारे में देख लिया। अभी हम थोड़ा सा डेटी वर्शिप के बारे में देखते हैं। हम लोग भगवान की सेवा करते हैं, अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, है ना। जब हम सेवा करते हैं, क्या वो सेवा करने का भाव सही है हमारा? तो हम सेवा करते वक्त हम लोग किस चेतना से सेवा करते हैं? पहले पहले जब इस्कॉन की शुरुआत हुई थी, तब प्रभुपाद जी एक जगह उन्होंने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के स्थापना की थी, शुरुआत की दिनों में। पहला जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा डेटीज था हमारे पूरे इस्कॉन की दुनिया में। तो एक दिन जगन्नाथ रथ यात्रा हुआ, सॉरी जगन्नाथ यात्रा से बहुत पहले, एक दिन प्रभुपाद ने देखा कि ऑल्टर में जगन्नाथ जी गायब है। तो प्रभुपाद पूछने लगे, अरे जगन्नाथ किधर गए? तो सारे भक्तों ने उनको कहा, प्रभुपाद आपने बताया हमको कि जो भी हम करते हैं भगवान को भी करना चाहिए। हम सब लोग मॉर्निंग वॉक में जाते हैं तो हम लोग भगवान को भी लेके गए मॉर्निंग वॉक में। उनको लगा, हमको लगा कि भगवान को थोड़ा चल फिर के आना चाहिए, रोज पूरे दिन बैठे हुए यहां पे ऑल्टर में। तो वो उठा के लेके चले गए जगन्नाथ को वो मॉर्निंग वॉक के लिए। प्रभुपाद ने कहा, अरे भाई ऐसे जगन्नाथ को नहीं लेके जा सकते हो, उनको बाहर लेके जाना है तो बड़ा रथ करना पड़ेगा और बहुत बड़ा रथ यात्रा करना पड़ेगा, बहुत बड़ा त्योहार करना पड़ेगा, ऐसे ही भगवान बाहर जाते। उसके बाद जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हुई इस्कॉन में। तो प्रभुपाद का लगा इन लोगों से जगन्नाथ बुलवा रहे। मतलब सोचिए किस तरीके से जगन्नाथ का रथ यात्रा शुरू हुआ, कोई उठा के लेके चला गया जगन्नाथ को मॉर्निंग वॉक के लिए। तो एक बार एक मंदिर में प्रभुपाद गए थे और वो मॉर्निंग वॉक के बाद दर्शनार्थी के लिए आए मंदिर, और दर्शनार्थी के लिए वो भगवान के सामने आ गए। गोविंदम आदि पुरुषम चल रहा था और प्रभुपाद दंडवत किए। जब दंडवत कर रहे थे, राधा कृष्ण के विग्रह थे, बहुत प्रेम से दंडवत किए उन्होंने। उठ के देखा तो वहां पे गौर नेता विग्रह है। प्रभुपाद गए, अरे इतने दंडवत करके उठने से पहले डेटी कैसे बदल गए? तो उन्होंने कहा, हमारे पास रोटेटिंग ऑल्टर है, ऐसे घूमता है, तो सामने गौर नेता है और पीछे राधा कृष्ण है। प्रभुपाद ने कहा, आपको कौन दिमाग लगाने के लिए बोला ऐसे सब करने के लिए? अमेरिका में और अलग ही प्रकार का दिमाग लगाते हैं नया नया। तो वहां रोटेटिंग ऑल्टर बना दिया, सामने गौर नेता और पीछे राधा कृष्ण। प्रभुपाद ने कहा, ऐसा घुमा नहीं सकते हो भगवान को, सीधा रखो और दोनों को सामने रखो। तो मतलब हम लोग जब भगवान की सेवा करते हैं, हमारा अपना दिमाग लगा के सेवा करते हैं ना, लेकिन हम ट्रेडिशन को समझते नहीं है, हम जो भगवान क्या चाहते हैं वो समझते नहीं है, बस अपना दिमाग लगा के कुछ करते हैं सेवा, और हमको लगता है बहुत सेवा किया भगवान का, है ना। तो जब हम सेवा करते हैं, उस सेवा को करेक्ट करने के लिए भी भगवान को बहुत मेहनत करना पड़ता है। जैसे हम बरसाना गए थे कुछ दिन पहले, मैं एक कहानी बता रहा था हमारे मंदिर की। एक बार हम लोग सारे ब्रह्मचारी और कुछ लोग जो है प्रसाद के लिए बैठे हुए थे लंच के लिए, और लंच के समय जो है महाप्रसाद बांटा जाता है। तो महाप्रसाद की इच्छुक बहुत लोग हैं और बहुत ही प्रेम से आते हैं महाप्रसाद खाने के लिए, और स्वीट राइस बांट दिया सबको, महाप्रसाद भगवान को अर्पण किया हुआ स्वीट राइस। तो सबको लगा, अरे स्वीट राइस इतना अच्छा होना चाहिए, और मुंह में डाल लिया, सबका मुंह एकदम बहुत ही गंदा हो गया। सबको लगा कि ये क्या, ये क्या क्या बनाया, स्वीट राइस थोड़ी है। तो माता जी ने जो स्वीट राइस बनाया, शक्कर की जगह पे सिट्रिक एसिड डाल दिया, तो शक्कर और सिट्रिक एसिड एक जैसे दिखता है ना, तो डाल दिया, और इतना इतना गंदा स्वीट राइस बन गया। तो आप सोचिए ये स्वीट राइस को भगवान को अर्पण करेंगे तो कैसा होगा। तो इसलिए भगवान के ऑल्टर में हमेशा राधा रानी रहती है, उनको मालूम है ये भगवान को रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये सब लोग कुछ भी एक्सपेरिमेंट करके स्वीट राइस देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो भगवान को अर्पण होने से पहले राधा रानी पहले टेस्ट करती है, बोलती सोचती है कि ये व्यक्ति को अनुभव है क्या कृष्ण की सेवा करने के लिए, है ना। तो राधा रानी जो हमेशा फिल्टर बन जाती है हमारे और भगवान के बीच में, और हमारी जो सेवा है राधा रानी, सारी जो गलतियां हैं, सारी जो उसमें टूटियां हैं, कमियां हैं, उसको निकाल के उसमें अच्छाइयां डाल के राधा रानी जो भगवान को अर्पण करती है। तो आप सोचिए राधा रानी को कितना मेहनत करना पड़ता है। तो हम लोग तो सोचते हैं कि बहुत सेवा कर लिया, लेकिन हमारे सेवा के बाद राधा रानी का सेवा शुरू होता है। हमारी सेवा को अंडू करने के लिए राधा रानी बहुत मेहनत करती है, उसके बाद भगवान तक पहुंचता है कि नहीं। तो हमारा सेवा भी एकदम बेकार है, डेटी वर्शिप भी एकदम बेकार है। चलो हम सोचते हैं कि बहुत हम लोग ऑस्टेरिटी करते हैं, बहुत फास्टिंग करते हैं ना, इस्कॉन में तो हर दूसरे दिन फास्टिंग आ जाता है, अभी एक फास्टिंग खत्म हुआ दूसरा शुरू हो गया। तो लोगों को लगता है कि थोड़े समय के बाद हम तो बहुत ही ऑस्टियर लोग है कि नहीं। महाप्रभु जब श्रीवास आंगन में थे, और श्रीवास आंगन में वो पूरा रात नृत्य करते थे, और श्रीवास आंगन की बहुत फेमस महाप्रभु की ऑल नाइट कीर्तन होते, रात भर कीर्तन चलता रहता था। तो एक बार एक ब्राह्मण था जो उस कीर्तन में भाग लेना चाहता था, तो वो श्रीवास पंडित के पास गए और उनको बोले कि आप मुझे प्लीज अनुमति दीजिए इस कीर्तन में भाग लेने का, मुझे महाप्रभु को नाचते हुए देखना है एक बार। तो उन्होंने कहा, ब्राह्मण ने कहा कि मैं बहुत ही ऑस्टियर ब्राह्मण हूं, मैं बहुत तपस्या करता हूं और मैं सिर्फ दूध पीता हूं। तो श्रीवास ठाकुर बहुत इंप्रेस हो गए, बोले आप सिर्फ दूध पीता है। तो हम लोग जो है ये इस प्रकार के जो ऑस्टेरिटी है उसे बहुत प्रभावित हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति बोलता है मैं चतुर्मास कर रहा हूं, मैं ये ऑस्टेरिटी कर रहा हूं, वो ऑस्टेरिटी कर रहा हूं, निर्जल एकादशी हर एकादशी कर रहा हूं, तो उससे हम बहुत प्रभावित हो जाते हैं, बोलते हैं ये बहुत एडवांस्ड है। हम लोग ऑस्टेरिटी को, तपस्या को एडवांसमेंट से जोड़ देते हैं। हमको लगता है बहुत तपस्वी है मतलब बहुत ही महान भक्त है। तो महाप्रभु की कीर्तन में तो शिवाज ठाकुर ने उसको अनुमति दे दिया, उसको कहा देखो मैं तुमको छुपा के रखता हूं, एक बड़े बक्से के अंदर छुपा के रखता हूं, उसके अंदर आप छुप जाना और बाहर मत निकलना प्लीज। महाप्रभु ने किसी को अनुमति नहीं दिया है बाहर से आने का, लेकिन आप बहुत तपस्वी हो तो आपको छोड़ रहा हूं मैं अंदर। तो एक बड़े टोकरी के अंदर उसको बिठा दिया और ढक दिया। तो महाप्रभु आके कीर्तन शुरू कर दिए, और महाप्रभु उन्माद होके इतना उल्लास से नाच रहे थे, कीर्तन में भाग ले रहे थे, गा रहे थे। थोड़े समय के बाद महाप्रभु ने कीर्तन रोक दिया, बोले आज कुछ मजा नहीं आ रहा है। शिवास को पूछा यहां पे ऐसा कोई है क्या जिसको यहां पे होना नहीं चाहिए। शिवास ठाकुर ने कहा महाप्रभु यहां पे कोई पापी नहीं है। तो महाप्रभु ने शुरू कर दिया वापस कीर्तन, नाचने लगे, गाने लगे। थोड़े समय के बाद वापस रोक दिया, और महाप्रभु ने उनको पूछा यहां पे ऐसा कोई है क्या जो उसको जिसको होना नहीं चाहिए। शिवास ने कहा यहां पे कोई पाखंडी नहीं है, कोई भ्रष्ट व्यक्ति नहीं है। तो महाप्रभु ने शिवास को पूछा अरे भाई मैं आपको ये नहीं पूछ रहा हूं कि कोई भ्रष्ट है, पाखंडी, पापी है, मैं बोला ऐसा कोई है क्या जो यहां पे होना नहीं चाहिए। जैसे ही महाप्रभु ने कहा वो व्यक्ति को समझ में आ गया, वो ब्राह्मण को, कि मुझे यहां से निकलना चाहिए, समय आ गया निकलने का। तो उठ के निकल रहा था बाहर, तो शिवास ठाकुर महाप्रभु को कहने लगे महाप्रभु ये जो है बहुत ही तपस्वी ब्राह्मण है, सिर्फ दूध पीता है और वो भी दिन में एक ही बार। महाप्रभु ने शिवास को कहा मेरे नृत्य को देखने का क्वालिफिकेशन सिर्फ दूध पीना है क्या? मतलब सोचिए महाप्रभु की नृत्य को देखने का क्या, उस व्यक्ति में क्या क्षमता होनी चाहिए, और शिवास ठाकुर बोल रहे हैं कि ये दूध पीता है इसलिए वो देख सकता है आपका नृत्य। महाप्रभु ने कहा तपस्या से मेरा मेरा जो अनुयायी नहीं बन सकते हो, सिर्फ तपस्या करने से आप भगवत धाम नहीं जा सकते हो। तपस्या एक अंग है, एक अंग है भगवत धाम जाने का। मतलब तपस्या को ही आपने स्रोत बना दिया। लेकिन तपस्या कौन से भाव से करना चाहिए? तपस्या तो करना चाहिए, लेकिन उस तपस्या के पीछे भाव क्या होना चाहिए वो महत्वपूर्ण है। हमारा शरीर तो फास्टिंग करता है, लेकिन हमारा अहंकार जो है फीस्टिंग करता है कि नहीं? तो हमारा शरीर फास्टिंग कर रहा है, बहुत तपस्या कर रहा है, लेकिन हमारा अहंकार क्या कर रहा है? नाच रहा है, गा रहा है, उसको तो बहुत आनंद आ रहा है। हमारे अहंकार को लग रहा है कि जितना ज्यादा तपस्या करूंगा उतना मेरी प्रशंसा होगी, उतना मेरा यश बढ़ेगा, उतना मेरा गुणगान होगा, और उस गुणगान का प्रतीक्षा हम करते रहते हैं, और वो गुणगान जो है हमारा खाना है, हमारा आहार बन जाता है। निर्जल एकादशी करते हैं और 10 लोगों को बताते हैं मैंने निर्जल एकादशी किया। क्यों बताते हैं? बस भूख है, अन्न का भूख नहीं है। किसका भूख है? ये प्रशंसा का भूख है। कोई एक निर्जल एकादशी नहीं कर रहा है, उसको सामने आकर बोले अच्छा आपने नहीं किया, मैंने तो किया बाबा, मैं तो हर एकादशी निर्जल करता हूं। मतलब आप, हम क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को, हम किसको क्या बताना चाहते हैं, आप सोचिए। तो मतलब हमारा जो सोच विचार है तपस्या के पीछे, वो सोच विचार एकदम गलत है। तो वो सोच विचार के साथ तपस्या करेंगे तो तपस्या के क्या फल मिलने वाले हैं हमको, है कि नहीं? और उस तपस्या से क्या भगवान प्रसन्न होने वाले? उससे अच्छा भाई खा लो और नम्रता से रहो। जैसे वो कलयुग का ब्राह्मण है ना, एक ब्राह्मण था जो सो रहा था और गायत्री का समय आ गया था, तो सो रहा था वो, गायत्री उसका मिस ही होने वाला था, उसको किसी ने उठा लिया और वो तुरंत भाग के, उसने एक बार भी गायत्री मिस नहीं किया था, एकदम परफेक्ट। तो ये एक दिन वो मिस करने वाला था, तो उसने किसी ने उठा लिया, भाग के गया, गायत्री करके आ गया और उस व्यक्ति को पूछा, अरे भाई आप कौन हो, आपने मेरा बचा लिया? उसने कहा मैं कली पुरुष हूं। वो ब्राह्मण हैरान हो गया, बोले यार कली का काम है धर्म कार्यों को रोकना, आपने धर्म कार्यों को आपने प्रोत्साहन क्यों दिया, आपने उठाया क्यों मुझे, आप कली पुरुष कैसे हो सकते हो? तो कली पुरुष ने कहा उनको, देखो अगर आप सोते रहते और गायत्री समय पर नहीं करते तो आपको बहुत अफसोस होता, और उस अफसोस से आप बहुत ही चिंतित रहते और अपने आप को तुच्छ मानते, उससे आपका बहुत प्रगति हो जाता था। लेकिन आपने गायत्री बराबर टाइम पे कर लिया और उसके बाद जो घमंड आया ना, उससे आपका प्रगति नहीं हो रहा, आपका नुकसान हो रहा है। तो आप सोचिए तो क्या सही है और क्या गलत है कि नहीं? तपस्या करना सही है, लेकिन गलत चेतना के साथ तपस्या करना बहुत ही गलत है कि नहीं? उससे प्रगति नहीं होता है। तो हमें तपस्या सही सोच विचार के साथ करना चाहिए। तो हमारा जपा तो हरि बोल है, हमारा सेवा भी हरि बोल है, हमारा ज्ञान अर्जित करने का जो तरीका है वो भी गलत है, और हमारा भगवान की अर्च वगैरह की सेवा करने की तरीका भी गलत है, और हमारा तपस्या का जो सोच है वो तो बहुत ही हरि बोल है। तो ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक जगत जाएगा तो कौन उसको अंदर लेने वाला है बताइए? ऐसे व्यक्ति को बाय मिस्टेक अंदर भगवत धाम में ले लिया तो भगवत धाम में सबको हम लोग पूरा हाँ, उनकी सबकी चेतना हम लोग खराब कर देंगे, है कि नहीं? तो इसलिए ऐसे लोगों को भगवत धाम में लेते ही नहीं है। पहले अपना सब कुछ सुधारो, उसके बाद अंदर आओ। ऐसा व्यक्ति क्या करेगा भगवत धाम जाने के लिए, उसके लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूं। हमारे एक प्रभुजी थे जो US वीजा अप्लाई करने के लिए गए थे, जिसकी शुरुआत में गया था। तो जब वो US वीजा अप्लाई करने के लिए गए थे, रस्ते में लाइन में खड़े थे, US वीजा के लाइन में खड़े थे, और US वीजा आप लोगों को मालूम है बहुत ही मुश्किल वाला वीजा है, सबसे मुश्किल वाला वीजा है। बहुत लोग क्या क्या करते हैं US वीजा प्राप्त करने के लिए। हमारा एक हैदराबाद में एक मंदिर है वीजा बालाजी करके, तो वहां पे लोग जाते हैं US वीजा अप्लाई करने से पहले। तो ऐसा माना जाता है कि US वीजा अप्लाई करने के लिए वीजा बालाजी के पास जाओगे तो 100% वीजा मिल जाएगा। उनका नाम ही वीजा बालाजी। भगवान से क्या क्या काम करा रहे देखो हम लोग। तो ये प्रभु जी हमारे खड़े थे US वीजा के लाइन में, तो सामने एकदम एक माता जी थी जिनके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था, पागल जैसा रो रहा था बच्चा। आप कोई भी जगह पे बच्चे को रोते हुए देखेंगे ना, जैसे दो दिन पहले, कुछ दिन पहले मैं एक फ्लाइट में बैठा हुआ था, छोटा सा फ्लाइट था, और एक बच्चा रो रहा था। इतने परेशान हो गए सब लोग, किसी को समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए, और वो बच्चा जोर जोर से रो रहा है। और यहां पे यूएस वीजा कॉन्सुलेट में ये बच्चा रो रहा है। जो इमिग्रेशन ऑफिसर है ना, एक व्यक्ति थी, उसने वो माता जी को बुला लिया सामने, पूरा लाइन तोड़ के एकदम सामने बुला लिया। तो ये रोते हुए बच्चे के साथ गई माता जी, और उसने फाइल दिया, और जब उसने फाइल दिया पूरा फाइल उसके ऊपर ही गिर गया, वो ऑफिसर के ऊपर। तो उस ऑफिसर ने सारा पेपर जोड़ के सब देख लिया, और बार बार पेपर देखा भी नहीं, स्टैम्प मार के वीजा दे दिया, जाओ इधर से निकल जाओ। वो यूएस वीजा लेके निकल गई बाहर, और उसके पीछे एक आदमी खड़ा था, इस माता जी के पीछे, पूरा सूट बूट पहन के एकदम बढ़िया कंघी करके, सारा डॉक्यूमेंट्स एकदम परफेक्ट था। और वो माता जी सामने खड़ी थी, उसके चार डॉक्यूमेंट मिसिंग थे, वीजा मिल गया। जो अगला आदमी था, सब कुछ बराबर सबमिट किया, रिजेक्ट, वीजा नहीं मिला उसको। अब सोचिए, वहां पे वो जाके पूछ सकता है क्या, क्यों नहीं मिला मुझे? वहां पे सिर्फ एक ही चीज चलता है, वो है कृपा। मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, वहां सवाल नहीं पूछ सकते। वैसे ही आध्यात्मिक जगत में भी हम सब लोग वीजा अप्लाई करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस्कॉन जो है आध्यात्मिक जगत का वीजा कॉन्सुलेट है। हम सब लोग इस्कॉन में आते हैं, यहां पे आध्यात्मिक जगत में, जगत के लिए वीजा अप्लाई करने के लिए यहां पे आते हैं। और हमारे प्रभुपाद जी इमिग्रेशन ऑफिसर है, और प्रभुपाद जी हमारा पहला सारा डॉक्यूमेंट देखेंगे, बराबर है कि नहीं भाई। और हम लोग एक एक डॉक्यूमेंट लेके आए, सोलह माला जपा एक डॉक्यूमेंट है, चार नियमों का पालन एक डॉक्यूमेंट है, और मंगल आरती अटेंड करना एक डॉक्यूमेंट है, और सेवा करना एक डॉक्यूमेंट है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक डॉक्यूमेंट है, डोनेशन देना एक डॉक्यूमेंट है। हम लोग अलग अलग डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं, धाम, अलग अलग धामों में विजिट करना एक डॉक्यूमेंट है, सब डॉक्यूमेंट फर्स्ट क्लास तैयार है। लेकिन सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद क्या आपको वीजा मिलेगा? गारंटी नहीं है। एक ही तरीका है वीजा मिलने का, वो क्या है? प्रभुपाद की धोती पकड़ो, प्रभुपाद की कृपा प्राप्त करो, महान भक्तों की कृपा प्राप्त करो, श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करो। कृपा से ही हमारा जो 85 नंबर है, जो इनकम्प्लीट है, वो हो जाएगा। हम सोचेंगे हमारे क्षमता से हम करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो ये परपोर्ट में प्रभुपाद जी लिख रहे, मैं उन आत्म प्रकाशित परमात्मा को सादर नमस्कार करता हूं जो प्रत्येक हृदय में साक्षी स्वरूप शिक्षित है, जो विष्टित जीवात्मा को प्रकाशित करते हैं, और जिन तक मन, वाणी या चेतना के प्रयासों द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। तो हम लोग अपनी प्रयास से कोशिश कर रहे हैं भगवान की पहुंचने की, लेकिन प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं नहीं पहुंच सकते। कैसे पहुंच सकते हैं? एक ही तरीके से, वो है कृपा। तो हमारी प्रयास तो जारी होनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा हमारा चेतना, हमारी जो सोच है, हमारी जो इंटेंशन है, हमारी जो एटीट्यूड है, उसमें बदलाव होना चाहिए। उस चिंतन, उस एटीट्यूड में बदलाव जब आएगा, तब हम कृपा के पात्र बन जाएंगे। आइए इस सोच विचार के साथ हम अपना भक्ति करेंगे, और अपनी भक्ति में आगे प्रगति करने की कोशिश करेंगे। ये सोचते हुए हमारा प्रयास तो सिर्फ छोटा सा एक प्रदर्शन है, लेकिन अल्टीमेटली भगवत धाम जाने का अवसर जो है कृपा के साथ ही आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय।